नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय एक श्लोक नंबर 5। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य इच्छताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य इच्छताभयम्। भगवान ईश्वरो हरि स्मर्तव्य कीर्तितव्यस्य तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा ईश्वरो भगवान हरि स्तोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्तोतव्य कीर्तितव्यस्य हर्तमर्थविच्छताभयं तस्मात् अत एव भारत हे भरतवंशी सर्वात्मा परमात्मा भगवान भगवान ईश्वरः नियामक हरि श्री भगवान जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं, श्रोतव्य श्रवणीय है, कीर्तितव्य महिमागायन के योग्य च बी स्मर्तव्य स्मरणीय च तथा इच्छता इच्छा करने वाले की अभयम स्वतंत्रता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म चक्र में अपने आप को उलझा देता है। ये चक्र 84 लाख योनियों में जलचर वनस्पतियां, सरीसृपा पक्षी पशु असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है और यह मनुष्य जन्म की सकाम कर्मे चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल सक जाती है। श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वो जो भी हो, इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य को ही कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करते हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि ही संस्तुति या श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण भक्तरूप्यश्च कृपा सिंधुयैव च अतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा, तो सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम क्लास में। सबसे पहले मैं आप सबकी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ ताकि इस विषय में हम कुछ प्रयास करते हैं। तो आज का ये विषय ये दूसरे स्कंद से है। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। महाराज परीक्षित ने बहुत ही गंभीर एक सवाल किया है जो हम सबके लिए लागू हैं। जो मरने वाला है उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? तो उस ऐसे सवाल के लिए उन्होंने जवाब दिया है यहाँ पे आज के इस श्लोक में कि किस तरह से मनुष्य शरीर मिलने के बाद अपने इस समय को किस तरह भगवान के इस विषयों को सुनने के लिए अपना समय देना चाहिए, श्रवण करने के लिए, स्तुति करने के लिए। तो इसका परिणाम क्या होगा? आदमी निर्भय हो जाएगा, अभय हो जाएगा। ये इस श्लोक का अंतिम जो शब्द हैं। लेकिन इसके पहले के श्लोक जो हैं यही श्रीमद् भागवतम में आता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि अज्ञान के कारण सांसारिक जीवन में लोगों का समय सिर्फ ऐसे चीज़ों में चले जाता है क्योंकि वो जानते नहीं है कि जीवन का सच्चाई क्या है, लक्ष्य क्या है, आत्म तत्व यानी क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है कि पिछले श्लोक में कि किस तरह एक पारिवारिक जीवन में लोगों की श्रद्धा होती है कि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा ऐसे लोगों से पहचान है तो ये लोग सब मुझे रक्षा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति मृत्यु पा रहा है अपनी नज़र में, लेकिन देखते हुए भी ये नहीं लगता है कि उसको ये लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे, तो कौन रक्षा करेगा? ऐसे सवाल नहीं आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें लुप, क्या बोलते हैं, मग्न हो गया है। तो ऐसे विषयों को सुनने के लिए समय नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी ऐसे विषयों को सुनने में चेतावनी आ जाती है, जैसे कि आज कि आपको सब मालूम है कि दुनिया में किस तरह से हलचल मच रहा है, सब लोग भयभीत हो गए हैं। भयभीत का एक ही कारण है कि मरना तो कोई नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति अपनी तरह से सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करता है। अभी अमेरिका जैसे जो देश है, उनके लिए सुरक्षा के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। लेकिन ये जो घटना है, ये जो आज के जो चल रहा है संसार में, कि एक कीटाणु, एक वायरस कहीं पे से निकल गया है, पूरे हमारे दुनिया को हिला दिया है उसने। कहाँ से निकला, हाँ अभी ये भी किसी को बराबर से मालूम नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे वैज्ञानिक बहुत कुछ बताएंगे कि वो ऐसे निकला वैसे निकला, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हम सबको जगाना चाहते हैं। जो पूरी तरह से अज्ञान में है, अंधकार में है, माया में है, कभी कभी जगाते हैं, क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्यों तुम यहाँ पे अज्ञान की जीवन निभा रहे, तो कई बार उनको जरा डराना पड़ता है ना। वैसे डर बुरा नहीं है, यहाँ पे तो हमें बताया गया है कि हमें निर्भय होना चाहिए, लेकिन डर का भी एक अच्छा होता है ना, डर कोई बुरा नहीं है कई बार। तो ये जो डर है अभी जो है, जैसे माया का एक पूरा पर्दा से हमें पता नहीं चलता है कि सच्चाई क्या है, तो कभी कभी भगवान उस पर्दे को ऐसे उठा देते हैं ताकि हमारा नजर पड़े, अरे क्या हो रहा है। तो अमेरिका जैसे इतना प्रभावशाली शक्तिशाली देश भी घबरा जाता है और बोलता है कि बस सब कुछ यूरोप से आने वाले फ्लाइट बीट सब बंद कर दो, कोई नहीं आएगा हमारे देश में। यानी यही है उनके पास सॉल्यूशन कि रोक दो, क्योंकि आ जाएगा तो हम नहीं संभाल सकेंगे। यानी सब लोग डर गए। तो एक डर है, भगवान खुद इस तरह से डरा देते हैं हमें जाग जाने के लिए। तो वैसे कोई डर बुरा नहीं है। हमारे गुरुकुल में बच्चे अभी एग्जाम परीक्षा के लिए जा रहे हैं, ज़रूर डर है। अगर कौन सा डर है, अगर अच्छा नहीं करूँगा, मार्क्स नंबर कम आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती नहीं होना चाहते, वो भी एक डर है। उस डर से हम, तो वो डर भी अच्छा है। लोग सरकार को टैक्स देते हैं, डर कर देते हैं अगर नहीं दिया तो पकड़ा जाएगा, तो ये डर भी एक अच्छा है। हमारे रास्ते में लोग गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के रूल डर से फॉलो करते हैं, अगर नहीं करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ये सब डर एक तरह से अच्छा है, लेकिन हम इस डर की नहीं बात कर रहे हैं, ये हम उस डर की बात कर रहे हैं जो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। जैसे अभी ये एक घटना हो गई, वैसे ही हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक ऐसे कहीं ना कहीं एक डर है। किसी को नौकरी छूट जाने की डर होती है, किसी को परिवार के कोई लोग अलग हो जाएगी, ये डर होता है। हाँ, किसी को सामाजिक नाम में मेरा कुछ खराब हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अगर ऐसे करूँगा तो लोग बुरा मानेंगे, वो डर से एक चिंता होती है। बहुत सारे ऐसे चिंता, इतनी चिंता होती है कि वो बस भविष्य की सोचता रहता है क्या होगा, तो उस चिंता से वो अपने कार्य को सही तरह से कर भी नहीं सकता। तो हमारा विषय है आज की, यहाँ पे जो बताया गया है सुखदेव गोस्वामी, अभयम। तो ये अभयम क्या हम हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने बताया है तात्पर्य में, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत बड़े महान संत पुरुष ही अभय हो सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति जो है वो भी अभय हो सकता है, अगर वो सुखदेव गोस्वामी के कहने के अनुसार चलता है। तो ये एक तरह का हमारा अनुभव है जो अभय कैसे हुए? तो हम यहाँ देखते हैं हमारे स्कूल में बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अभय है वो। उनको कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं? उनको विश्वास है कि उनके माँ बाप उनकी देखभाल करेंगे। वो कभी चिंता नहीं करते। उनको ये भी मालूम नहीं कि ये कोरोना वायरस क्या है, हाँ ये क्या हो रहा है, इतने सबको डरा दिया है। उनको अगर उनको बताया गया तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, और वो तो मालूम है कि बस सब कुछ ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक अभय। क्यों? क्योंकि मालूम है कि मेरी रक्षा करने वाले मेरे माता पिता है। सो उसी तरह से हमारे भगवद गीता में बताया गया है कि ये भय क्यों निर्माण होता है। तो भगवद गीता में एक दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, ये बताता है कि बड़े जो ऋषि मुनि है उन्होंने अपने आंखों से देखा है सच्चाई क्या है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विजते सताह, उभयोर दृष्टंतस अनन्योस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी का मतलब है जिन्होंने सच्चाई को देखा है, जाना है, साक्षात्कार हुआ है। तो वो कहते हैं कि संसार में दो चीज हैं, एक शाश्वत है और दूसरा स्थिर नहीं रहता। जब हम हमारी आसक्ति ऐसे चीजों पे लगा रहता है जो स्थिर नहीं रह सकता, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, बदलते रहता है, तभी डर पैदा होता है। हाँ, हम सब क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमारी चेतना ऐसे विषयों में लगी है और वो बदलते रहता है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो अगर ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है, जो स्थिर है, जो पूरी तरह से हमें रक्षा कर सकता है, वो है हमारी आध्यात्मिक चेतना। तो मनुष्य शरीर में ये उपलब्ध है, और इसके लिए अगर हम नहीं प्रयास करेंगे, समय नहीं निकालेंगे, तो हमारा जीवन सिर्फ डरते डरते रहेंगे और उसके बाद मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। इस तरह से यहाँ बताया गया कि कितने योनियों से हम गुजरे हैं, बस यही करते गए, लेकिन अभी भी यही लग रहा है कि यहाँ पे मैं सुधार सकता हूँ, यहाँ पे मैं सुखी हो सकता हूँ। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि ये दुखालयम है। जब भगवान खुद कहते हैं दुखालयम है, तो हम क्या प्रयास करेंगे? हमारी जितनी भी योजना है, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर इसको नहीं जानते हैं तो ये कभी हम सफल नहीं हो सकते। तो ये है एक सच्चाई जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, कि हमें विश्वास होना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बता रहे हैं। तो हमारे एक आचार्य है हमारे इस परंपरा में, भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि चार तरह के एक स्तर होता है। हम लोग हर एक व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है हमें, वो चार स्तर पे होता है। कोई भी प्रेरक, जैसे मैं किचन में था, तो मैं किचन में जो काम कर रहे हैं उनसे पूछा मैंने, तुम्हें काय का डर है? तो उसने बताया, मुझे डर है यार कि अगर गलती हो जाएगा तो मेरे को डांट पड़ेगी या मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो ये भी एक स्तर है कि जो हम कार्य कर रहे हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि चार स्तर है, उसमें से सबसे नीचा स्तर है डर से करता है, नहीं करूंगा तो नौकरी जाएगी। तो कई बार भगवान के पास भी कोई जाते हैं तो डर से जाते हैं, अरे अगर मैं कुछ अपराध करूंगा या कुछ पाप करूंगा तो भगवान मुझे शिक्षा देंगे, डर से। तो यानी भगवान को क्या देख रहा है? ये शिक्षा देने वाले भगवान है, डर के देखता है कि भगवान की एक सिर्फ डर का रूप ही दिखाई देता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो उससे ऊंचा जो स्तर है वो है, उसको डर नहीं है। वो इसलिए करता है कि मैं ये कार्य करने से मुझे कुछ फल मिलेगा, कुछ उपहार मिलेगा, इसलिए करता है। कोई प्रमोशन मिलेगा, मेरी तरक्की होगी, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो इस प्रेरणा से करता। और वो भगवान के पास भी अगर जाता है इस इच्छा से जाता है कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं मैं तो नहीं कर सकता लेकिन भगवान कर सकते हैं, तो भगवान के पास जाके प्रार्थना करता है कि मेरी ये सब इच्छाएं आप पूरी करो। तो यहां इसका मतलब है भगवान को यही देखता है कि भगवान मेरे लिए कुछ देने वाले हैं, भगवान का दूसरा कुछ नहीं जानता कि ये देने वाले मैं मांगूंगा देगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये नीचे से तो अच्छा है, इसको तो डर तो नहीं है, ये भगवान को डर से नहीं देख रहा है, ये देख रहा है कि भगवान मुझे देगी कोई वरदान देगी, तो उससे डर से अच्छा है। लेकिन जो उससे ऊपर स्तर पे जो है वो देखता है कि मुझे तो ये यहां पे मैं काम कर रहा हूं, तनख्वाह तो दे रहे हैं लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी समझते हो, इस भावना से करता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, कोई देखता है नहीं देखता है ये मेरा फर्ज है, ये कर्तव्य है, मैं करूंगा। तो देखने की नहीं है ना, कई बार मुझे अपने गौरचरण प्रभु बताते हैं कि अरे उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, नहीं तो कोई काम करता ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत स्वाभाविक है कि लोग ज्यादा अपने हक मांगते हैं लेकिन अपने कर्तव्य के बारे में कोई ये नहीं सोचता। अगर सोचोगे, सब लोग सोचे कि यार मेरा ये कर्तव्य है, मुझे काम करना है, मेरा फर्ज है, तो सब कुछ समाज में सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, पूछते हैं कि मेरा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये मेरा हक है, राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, राइट्स। तो ये है वो अपना जो फर्ज निभाता है हाँ, उसको ये चिंता नहीं होती है कि कुछ उपहार मिलेगा या नहीं, वो अपना कर रहा है। उसी तरह से वो भगवान के पास भी जाता है तो देखता है कि अरे भगवान ने इतना सब दिया है हाँ, तो मैं भगवान से मांगू क्यों, तो मेरा जो कर्तव्य है भगवान को मुझे प्रणाम करना। यहाँ पे वो ये नहीं देख रहा है कि भगवान के मूल स्वरूप को नहीं देख रहा, सिर्फ ये देख रहा है कि भगवान ने दिया है तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इससे भी एक ऊंचा है, वो क्या है, क्या हो सकता है, तो ये जो प्रेम है, जब प्रेम जाग जाता है तो ये सब कुछ नीचे के अपने आप चले जाते हैं और उसमें जो एक फर्ज होता है वो अपने आप आ जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है माँ का बच्चे के साथ का जो एक कार्य है, जब माँ अपने बच्चे के साथ करती है तो उसमें वो माँ वो एक ड्यूटी समझ के नहीं करती है कि ये मेरा ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी हो जाता है उसमें, क्योंकि ड्यूटी का मतलब है अच्छे से करती है ना, ध्यान से करती, किसी को बताना नहीं पड़ता है। क्यों करती है वो, क्योंकि वो प्रेम है। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये इतने सारे स्तर में जो सबसे ऊंचा है, तो आधुनिक समाज में कोई प्रेम से कार्य करता है बहुत गलत, बहुत ही कम हो गए कि जो बोलते हैं मैं मुझे प्रेम है इसलिए मैं काम कर रहा हूं, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे इस ऑफिस से बहुत प्रेम है। अगर उसको बता दे अच्छा, अगर उसका प्रेम सच्चा है कि नहीं पता लगाने, तो अच्छा तुम करते रहो, तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, करोगे क्या, तभी पता चल जाएगा कि वो प्रेम के लिए कर रहा है या तनख्वाह के लिए कर रहा है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम बताया जाता है यहां पे, जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तो इस प्रेम में वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि या इन्होंने दिया है तो मुझे करना है, वो तो बस ये जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, उनको पूरा विश्वास है, जिस तरह से बच्चों को विश्वास है अपने माता पिता के ऊपर कि वे कल मुझे खाना मिलेगा, ये पूरा विश्वास है उनको, कभी पूछते नहीं बच्चे कि कल भी मिलेगा या नहीं खाना, उतना पूरा विश्वास है। उसी तरह से जब भगवान के ऊपर प्रेम जाग जाता है तो वो व्यक्ति वो प्रेम से जो कोई भी कार्य करता है वो पूरे भगवान के प्रेम के लिए करता है, क्योंकि उसका मन में पूरी तरह से भगवान के लिए प्रेम जाग जाता है। लेकिन ये प्रेम कैसे जागेगा? ये ऐसे ही थोड़ी जाग जाता है। हम किसी व्यक्ति को कह गए यार इस व्यक्ति के से तुम्हें प्रेम करना चाहिए, तो पूछेगा सर क्यों करना चाहिए? लेकिन जब हम बताते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, तुम्हारे इनके साथ क्या रिश्ता है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है और अभी भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं मालूम, तभी स्वाभाविक है कि अच्छा मुझे तो नहीं मालूम था। हो सकता है जब तभी उसका रिश्ता बन जाता है, अच्छा इन्होंने ऐसा ऐसा किया मेरे लिए तो फिर जरूर मैं इनकी। तो इसी तरह से जीवात्मा का भी यही रिश्ता है भगवान से, हम भूल गए हैं, लेकिन जीवात्मा का एक स्वभाव है कि वो प्रेम स्वीकार करना चाहता है और प्रेम जताना चाहता है। यही आत्मा का मूल है, यही चाहते हैं। लेकिन जब भगवान के ओर नहीं है, किसी और के हो रहे हैं, यानी हो सकता है कि यहाँ के रिश्तों में है, लेकिन यहाँ के रिश्तों का जो पहले जो रिश्ते जो शुरुआत में मीठी होती है वो कुछ ही समय में कड़वी हो जाती है, फिर वही प्रेम नहीं रहता। लेकिन भगवान के साथ का जो रिश्ता है वो कभी कड़वी होती नहीं है, और मीठा बढ़ते जाती। तो इस तरह का जो चेतना है, उस चेतना में ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति अभय हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम जाग जाता है तो उसमें एक हिम्मत भी आ जाती है, वो डरता नहीं है किसी से, कुछ भी कार्य करने के लिए डरता नहीं है। जैसे हमारे आधुनिक जीवन में हमने देखा है कि प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे उन दिनों में, ऐसे ऐसे कार्य करते थे, हमें आश्चर्य होता था कि आपको डरने लगता था। कहते हम लोग प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हाँ कभी कभी हम नकली कुछ पासपोर्ट भी बना देते थे। अब इन पासपोर्ट में ऐसे बनाएंगे कहीं चले जाएंगे तो सरकार पकड़ेगी तो बहुत बड़ी दंड हो सकती, लेकिन बस पुस्तक वितरण करना था हमें ऐसे देश में जाकर, तो हमने कभी सोचा नहीं क्या होगा, हमें सिर्फ प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। तो उसमें वो प्रेम में उनको सब तरह की हिम्मत आ जाती, डर ही नहीं लगता था कुछ, क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे पकड़े जाएंगे। तो ये प्रेम का लक्षण है। तो इस तरह भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। 16 अध्याय में भगवान कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक असुर है और एक दैविक गुण है उनमें। तो उनके अनेक अनेक गुण बताए गए इसमें। 16 अध्याय के जो पहला श्लोक है उसी में बताया जाता है, भगवान कहते हैं कि व्हाट इज ही सेइंग, यस निताय चैतन्य अभयम। तो शुरुआत का शब्द ही आता है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो यहां पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो अभय या ये जो गुण है ये गुण होना चाहिए। वैसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों में अनेक ऐसे गुण बताया गया जो बहुत घमंडी होते हैं, बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, जिनमें बहुत काम भावना ज़्यादा है, दूसरों पे को कष्ट देते हैं, ऐसे कई हैं। उसमें से ये जो दिव्य गुण है उसमें से पहला बताया कि फियरलेसनेस। तो ये फियरलेसनेस जो है वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि तस्मात सर्वात्मा भारता, कि किस तरह से आप अभय हो सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ उनके विषयों को सुनना है, उनके विषयों को स्मरण करना है और उनके विषयों को बोलना है। जब हम ऐसे विषयों के संग में आते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें भी उस तरह के गुण आते हैं। तो हमारे इस आधुनिक इतिहास में हम देखते हैं कि जो भागवतम में ऐसे एक कथा आती है प्रहलाद महाराज की, 5 साल का लड़का है, पूरी तरह से उसको डर ही नहीं है, कुछ प्रेम है, अपने पिता के लिए भी प्रेम है, ऐसे नहीं कि पिता से द्वेष कर रहा था, पिता तो उनको मारना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद के दिल में कुछ द्वेष है ही नहीं, क्योंकि भगवान के लिए इतना प्रेम है। हम क्यों बार बार भगवान के लिए बता रहे हैं, क्योंकि संसार का जो प्रेम अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है और ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, जैसे मैंने बताया वो कड़वी हो जाती है। लेकिन भगवान के साथ एक बार प्रेम जुड़ जाता है तो उसके बाद हर एक रिश्ता जो है प्रेमनीय हो जाता है। तो प्रहलाद को जब उसके पिता ने बुलाया और पूछा उसे कि तुम स्कूल में क्या सीखे हो, अभी प्रहलाद तो जानते थे कि उसके पिता को क्या पसंद है क्या नहीं है, प्रहलाद बोल सकते थे कि मैंने ऐसे ऐसे विषय सीखा है, लेकिन प्रहलाद पिता के लिए प्रेम था, तो प्रेम था इसलिए उसको भय ही नहीं था। तो प्रहलाद ने सीधा जो बोलना है सच वही बताया, जो अपने पिता के लिए अच्छा है वो बताया, ये नहीं बताया कि पिताजी जिससे खुश हो गए कुछ बोलेंगे नहीं, बोल सकता था कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे सीखा, गणित सीखा, भूगोल सिखाया, उन्होंने सीधा उसको बता दिया कि हे पिताजी, हाँ आप असत संग, हाँ ऐसे विषयों को आपने किया है, इससे सिर्फ भय निर्माण हो सकता है, आपको ये सब त्याग करना चाहिए, आपको विष्णु की सेवा करना चाहिए। हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित हो गए, क्योंकि प्रहलाद पूरी तरह से भगवान का आश्रय लिया है तो उनको कभी लगा ही नहीं। हाँ रूप गोस्वामी कहते हैं कि रक्षिषितो इति विश्वासो, यानी पूरी तरह से विश्वास है कि मुझे भगवान हर एक संकट स्थिति में बचाएगी, ऐसे श्रद्धा होना। हाँ हमारे यहाँ के समाज ऐसे नहीं है कि वैसे हमारे पुलिस वाले हमारी रक्षा करना चाहिए, लेकिन कोई बोल सकता है कि मेरा पूरा विश्वास है कि पुलिस मेरी रक्षा करेगी कि पुलिस में ही शक होने लगता है कि किधर हाथ मिला हुआ है सामने वालों से। लेकिन ये जो है प्रहलाद महाराज का जो एक जो प्रेम की भावना है उसमें उनको उसी तरह से आधुनिक जीवन में हमारा और एक खुद एक उदाहरण है श्रील प्रभुपाद का, हमारे संस्थापक आचार्य। 70 साल की उम्र में आप किसी को कहो कि रास्ता क्रॉस करना है तो वो भी डरता है, अरे यार बराबर चल नहीं सकता मैं, कहाँ पे गाड़ी पे चल लूँ मैं, किधर ट्रेन बिन में जाने का सवाल ही नहीं आता है, किसी का सहारा चाहिए कहीं जाने के लिए। तो प्रभुपाद में ऐसा क्या था, कैसे वो अभय, उनका नाम भी अभय, हाँ उनमें ऐसे क्या था कि कुछ डर ही नहीं है उनको। हाँ 69 साल के उम्र में आप सोचिए अकेले ऐसे जगह पे जाना, इनको मालूम ही नहीं है वहाँ कौन है, कौन मिलेगा उनसे। 1 महीने का पूरा पानी के जहाज में जाकर और 12 साल में उन्होंने, क्यों, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भगवान का सही श्रवण किया था, स्मरण किया था, उनके बारे में उन्होंने सब लिखा, उस करने से उनके हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम जाग गया कि यह स्वाभाविक है कि उस प्रेम से दया भावना इसलिए, वैसे उनका परिवार था लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया था, संन्यास लेने के बाद पूरे संसार को उसने अपना परिवार बना दिया, ये नहीं सोचा कि ये मेरे बच्चे नहीं है, ये सब कृष्ण के, जिनसे उनका कोई पहचान नहीं है, वैसे उन लोगों से भी इतना प्रेम। तो ये तभी होता है जब हृदय में भगवान के लिए प्रेम जाग जाता। तो इसलिए गीता में जो बताया है तात्पर्य में उस श्लोक में जो 16 अध्याय का जो पहला श्लोक है, भगवान तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि जो एक सन्यासी होता है उसको ऐसे अभय रहना चाहिए, क्योंकि सन्यासी अगर कोई सन्यासी बनता है और वो सोचता है कि अभी मेरे सन्यास बनने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा कोई ये समस्या आएगा तो कौन देखेगा, तो फिर इसका मतलब है वो सन्यासी पूरी तरह से भगवान का आश्रय नहीं लिया है। लेकिन जो सोचता है कि घने अंधकार जंगल में भी वो है लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो है, तो कोई सोचेगा अरे तो फिर ये तो सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए, मैं तो सन्यासी नहीं हूं। सन्यास एक कोई भारी नजर से नहीं होता है, सन्यास एक अंदरूनी है, वो सबके लिए। ये सच है कि माताओं को सन्यास नहीं दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि औरत अकेली कहीं जंगल में नहीं जा सकती, लेकिन वो घर में बैठे बैठे अगर इस सिद्धांत को स्वीकार करती है तो वो भी सन्यासी जैसी ही है, अपने परिवार के लोगों के साथ है लेकिन हृदय में पूरी तरह से भगवान का आश्रय लिया है। तो इस तरह से सन्यास यो जो उसका एक जो सार है वो तो सबके लिए है, यानी सब कुछ दूसरे विषयों का त्याग कर अंदर ही अंदर आश्रय सिर्फ भगवान का लेना। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं यहां पे कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसके लिए, ये सभी के लिए। जो रामायण में जो कथा आती है जब विभीषण अपने भाई को समझाते हैं लेकिन रावण समझते नहीं है और उनको निकाल देते हैं, बोलते हैं तुम मेरे भाई हो इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर तुम भाई नहीं होते तुम्हें मार डालता मैं, तो विभीषण सोच लेते हैं कि अभी क्या इससे क्या करना है, तो निकल जाते हैं और आकर शरण लेते, लेकिन शरण लेने से पहले सब लोग चेतावनी देते हैं भगवान राम को कि राम पूछते क्या करे, विभीषण को ले क्योंकि युद्ध का समय है और वहां से आया है, राक्षस के परिवार से आया है, ये शायद कुछ हेतु से आया है, इसे नहीं लेना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। लेकिन सिर्फ हनुमान जी बताते हैं कि नहीं, मैंने देखा है इनमें कुछ गुण है, ये इनको आश्रय देना चाहिए। तो तभी भगवान राम कहते हैं अगर रावण भी मेरे सामने आता है, देखो रावण जिसने सीता को अपहरण किया है वो भी आकर अगर मेरे आश्रय लेता है तो मैं उसको आश्रय देता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, जो कोई स्थिति में है, हम कोई नहीं कह सकता अरे मैं तो ऐसे हूं, मैं ये स्थिति में हूं, मेरा क्या है, मैंने ये किया है, मेरे मन नियंत्रण में नहीं है, लेकिन एक बार जिस तरह से विभीषण को स्वीकार किया वो रावण को स्वीकार करने तैयार है, तो हमारी बात क्या है। अगर हम जाके भगवान के सामने कहेंगे कि मैं आपका आश्रय लेना, आप मेरे हैं मैं आपका हूं, तो भगवान निश्चित हमारे पे कृपा करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारे उनके सामने आने से ही प्रसन्न हो जाते। इसलिए कहा जाता है कि हम उनकी दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, वो हमारी हमें देखे इसलिए हमें उनके सामने जाना चाहिए, हम देखे कि वो देख रहे हैं हमें, तो आप देखिए मुझे, हाँ मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे में ऐसे ऐसे कमियां हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे आश्रय देंगे, मैं आश्रय लेना चाहता हूँ। तो ये है भक्ति। तो इस तरह के जब प्रेम जाग जाता है तो हमारे दूसरे जो कुछ भी सामाजिक कार्य है, आप चाहे अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, लेकिन जो कोई भी कार्य करता है लेकिन दिल में उसमें ये जाग गया है तो उसके सब कार्य भगवान की सेवा के लिए बल्कि चले जाते हैं। तो ये है भक्ति का। बड़े बड़े हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि बस भक्त बनना चाहिए, प्रेम जगाना चाहिए, उसके बाद आप जो भी कार्य करते हैं कोई भी है आप समाज, वो सब कार्य भक्ति के साथ मिला जाता है। यानी किसी को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जंगल में जाने की, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। तो ये है भक्ति की महानता, ये प्रभुपाद हमें उन्होंने बताया। तो आज का ये जो श्लोक है हम फिर से दोहराएंगे। कहाँ गए यार, Yes. Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishwaro Hari Shrotavya Kirtitavyascha Smartavya Echethabhyam. तो ये अभयम सिर्फ भगवान की कथा सुनने से स्मरण करने से ये गुण आ जाता है, ये भक्ति का एक सार है। तो करना क्या है, समय निकालना है और भगवान के इस बार बार बताया जाता है ना उनकी महिमा के बारे में सुनना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए बोलने के लिए बहुत सारे विषय है, यही होती है ना। मंदिर में आने के बाद भी कई बार ऐसे विषयों में लग जाते हैं, मंदिर में आने के बाद हाँ कथा हो गई, बैठ गए वहां पे, ऐसे विषयों की चर्चा होने लगी जिससे कुछ किसी का जरूरतें हैं वो तो विषय बात करना पड़ता है कुछ सेवा की, लेकिन ऐसे ऐसे विषयों का मन खींच लेता है। तभी हमें याद करना चाहिए कि अगर हमें अभय होना है और इस तरह के जो डर है कि अभी समाज में जो फैला हुआ है लोग डर गए हैं, वैसे मृत्यु से डर गए हैं, है ना, मरना तो कोई नहीं लेकिन मृत्यु से तो सबको डर होता है, लेकिन जो भक्त होता है उसको डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके मालूम है कि मृत्यु एक अगले जीवन का एक दरवाजा खुल रहा है, भगवान के साथ उनका मिलन हो रहा है, तो इसलिए उसको डर ही नहीं है। तो मृत्यु का डर नहीं है, अगर मृत्यु का ही डर नहीं है तो फिर वो इस संसार के ऊपर नीचे से क्या हो सकता है। हमारे संस्था में एक वरिष्ठ भक्त थे, वो बता रहे थे, उन्होंने एक बार उनको देखा था, ये मंदिर में वो अपने 2 साल के बच्चे को ले आते थे और वो मंदिर मार्बल का बनाया हुआ था फ्लोर, तो कीर्तन के समय वो 2 साल के बच्चे को ऐसे ऊपर उठाते थे, तो पहली बार बच्चा ऐसे ऊपर उठाता तो थोड़ा सा ऐसे, फिर दूसरी बार जब उठाते तो बच्चा हंस रहा है, तीसरी बार उठाते तो और हंस रहा है और उसको ऊपर फेंक रहे हैं। अभी अगर हाथ छूट गया, बच्चा गिर गया तो जमीन पे मार्बल का फ्लोर रहने क्या, तो बच्चा क्यों हंस रहा है, अभी ऊंचा फेंका तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन बच्चा इसलिए हंस रहा है कि उसको मालूम है 100% कि ये मेरे पिता पकड़ लेते, इसलिए जब ये ऊपर फेंका है एक भयभीत स्थिति में भी वो हंस रहा है। तो ये है सच्चा अभय जो बताया गया। तो ये हमारी एक बहुत भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें इस तरह का ज्ञान छोड़ कर गए हैं, तो हमें सिर्फ इसके लिए समय निकाल कर प्रभुपाद के ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर चर्चा करना चाहिए, तभी इस तरह के जो ऊंचा नीचा जो हो रहा है संसार में उससे हम बच ही नहीं सकते, हम डरेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि डरेंगे नहीं, तो जो करना चाहिए वो तो करना चाहिए। अभी हमारे गोवर्धन इको विलेज में कुछ बताया जाएगा कि ये जो बीमारी है उसके लिए ऐसे करना है वैसे करना, हम ये नहीं बोलेगा अरे हम तो बस भगवान, हम सब इसमें विश्वास नहीं करते क्योंकि भगवान हमें आश्रय देने वाले, ये बहुत गलत है। जो कुछ करना है उसे करना है, हाँ किसी कोई अगर किसी को ये कुछ लक्षण है बीमारी के तो निश्चित हो ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए, उसे अलग घर में रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से दूसरों को लेकिन अगर हम देखते हैं कि किसी को है तो हमारी रक्षा के लिए हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और क्योंकि ये कीटाणु उस तरह से अंदर चले जाता है, तो ये सब और बार बार क्योंकि वो जीवित रहता है तो इसलिए हाथ बार बार धोना चाहिए। तो इस तरह के जो कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हम उसको ये नहीं कह सकते अरे ये सब बकवास है, तो जो जरूरत है वो भी करेंगे क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, उसका भी जो ज्ञान का हमें फायदा लेना चाहिए। तो इसलिए आप सुन रहे हैं कि जब भी मोबाइल में फोन आते तो अभी मैसेज आते हैं ना, पहले ही मैसेज आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे बकवास है ये, नहीं। तो ये ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ आज की इस स्थिति में हम किस तरह से इसको संतुलन में रखें। नाशतो विद्यते भावो, ना भावो विजयते सता। कुछ स्थिर है, कुछ स्थिर नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो करेंगे हम, लेकिन आश्रय लेंगे भगवान की, ये सब जानते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस कथा में बहुत ध्यान से बैठे हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीमद् भागवत पुराण की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।